हम आज चर्चा कर रहे हैं बहुत सुंदर एक विषय कि क्या भगवान का जन्म और कर्म हमारी तरह है। बहुत बार लोग सोचते हैं ये प्रश्न करते हैं कि कृष्ण तो एक सामान्य राजकुमार थे, उनको तो एक बहेले ने मार दिया। ये सब बिल्कुल मनोकल्पना है, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। भगवद गीता के चौथे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया। अजोपि अर्थात मेरा जन्म नहीं होता है, अव्यात्मा अर्थात मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। भूतानाम ईश्वरोपि सन अर्थात मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया अपनी प्रकृति में, अपने आध्यात्मिक शक्ति में स्थित होकर के संभवामि आत्ममाया, मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ अपनी कृपा से। तो अब इस संबंध में कुछ बातें हैं। पहली बात यह कि भगवान कभी भूलते नहीं, भगवान अपने जन्मों को भूलते नहीं हैं। हमसे पूछा जाए कि हम पिछले जन्म में क्या थे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब अपने को प्रकट करते हैं, अपने स्पिरिचुअल स्वरूप यानी आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करते, वो हमारी तरह हार्ड मास का शरीर नहीं लेते। ऐसा लग जरूर सकता है कि वह भगवान जन्म ले रहे हैं, लेकिन भगवान को अपने सारे जन्म याद रहते हैं। इसका कारण यही है कि भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि आज ही के समय आप कल क्या कर रहे थे, तो बड़ा मुश्किल होगा याद करना, अपने दिमाग को कुरेदना पड़ेगा। लेकिन भगवान को सब याद रहता है, पिछले जन्म में क्या किया, उससे पहले के जन्म में क्या किया। क्यों? क्योंकि वह हमारी तरह कर्म के बंधन में बंध करके आने के लिए बाध्य नहीं है। कारण यही है भगवान का, जैसे भगवान श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव के कारण आते हैं। जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्य कभी जन्म नहीं लेता, और अस्त होते समय हमको लगता है अस्त हो गया, लेकिन सूर्य तो अभी भी आकाश में स्थित है। तो इसलिए भगवान स्वयं अपने स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करते हैं, वे हमारी तरह शरीर परिवर्तन नहीं करते। भाई बद्धात्मा को तो शरीर मिलता है कर्मों के हिसाब से, भगवान के अरेंजमेंट से, लेकिन और अगला जो शरीर होता है वह इस शरीर से अलग भी होता है। और इस भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर भी नहीं है, अपितु इस जीवन में भी हम एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो रहे हैं। कैसे? हमारा शरीर लगातार परिवर्तित हो रहा है। लेकिन भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा नहीं होता है, वह स्वयं प्रकट होते हैं, वह अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है अपनी अंतरंग शक्ति से वह प्रकट करते हैं। क्यों और कैसा स्वरूप होता है? द्विभुज होता है, उसमें वह बांसुरी धारण करते हैं, और जैसे वह शाश्वत रूप है उनका आध्यात्मिक जगत में, वैसा ही प्रकट करते हैं। उनका स्वरूप जो है वह भौतिक जगत के गुणों से प्रभावित नहीं होता। हाँ, एक अद्भुत बात है कि भले ही वह भगवान अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह समान जीव की तरह कार्य कर रहे हैं। तो कारण क्या है कृष्ण के अपने पूरे जन्म को याद करने का, कि भगवान कृष्ण कभी शरीर परिवर्तन नहीं करते हमारी तरह। ये बात हमने सीखी यहाँ पे। अच्छा, दूसरा बात पे चलो नहीं करते, लेकिन क्या अपने कर्म के अनुसार आ रहे हैं? जब से हम लोग बार बार कर्म के कारण शरीर धारण करते हैं, तो क्या भगवान भी कर्म के अनुसार अपना शरीर को प्राप्त होते हैं? तो कहते ना, भगवान कृष्ण जो है वह पूरी तरह कर्म के ऊपर है, बल्कि कर्माधीश है, कर्म को अधिष्ठाता है, कर्म को चलाने वाले हैं, कर्म का जो सिद्धांत वह है वह उन्होंने बनाया है। तो भगवान किसी और शक्ति से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से आते हैं। उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए गवर्नर है, तो गवर्नर कभी जेल गया देखने के लिए कि जेल में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, तो वह सरकारी गाड़ी में जाता है और पुलिस वालों के साथ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कैदी है उसी, और बार की कैदी सोचे, अरे देखो भाई ये पुलिस की गाड़ी में आया है, पुलिस वालों के संग आया है, यह भी कैदी होगा, तो यह तो उन लोगों की मूर्खता होगी। और इसी बात को भगवान गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो मूर्ख लोग हैं वह सोचते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर धारण करके आता हूँ, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो भगवद्गीता को समझता है, वह जानता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे किस उद्देश्य से आते हैं। और वह लगे भले ही कि वह एक समान इंसान के आ रहे समान है, लेकिन वह कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं, अपितु जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं तो वह पतन के कारण हो जाता है उनका, वह समझ नहीं पाते। और भगवान इसीलिए बोलते हैं कि हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। क्यों ऐसा समझ पाता है? भगवान को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि लोग प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते। अड़गड़ बड़गड़ तरीके से खुद से स्वीकार करके अपने मन गणन तरीके से भगवान के बारे में अटकलबाजी करते हैं और समझ नहीं पाते। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है कि भाई देखिए, भगवान तो आपने कहा कि भाई भगवान शुरू में प्रकट करते हैं, लेकिन ये तो हम देखते हैं कि भाई बचपन में छोटे बच्चे के रूप में आए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर बड़े हुए, और फिर उसके बाद जो है युवावस्था को प्राप्त हुए, तो समान इंसान की तरह है। लेकिन देखिए, भगवान युवावस्था के बाद कभी वृद्ध नहीं होते। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो उनके कई पौत्र प्रपौत्र हो गए थे, 125 साल हो गया था, लेकिन वह एक 16-17 साल के युवक के समान ही दिखाई पड़ रहे थे, उनकी मुछ भी नहीं आ रही थी। तो आप देख सकते हो कि भगवान का जो स्वरूप है वो अद्भुत है। वो आश्चर्यजनक बात होगी कि उस समय के लोग भी सोच करके आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि भाई इतने समय बीत गए, ये वृद्ध क्यों नहीं हो रहे। तो भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, ये बात समझ लेना चाहिए। साथ साथ इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि भाई सूर्य का टेम्परेचर सुबह बड़ा है, ज़्यादा है कि दोपहर में? तो जब भी मैंने पब्लिक में प्रश्न किया तो सभी लोग बोलते हैं ना दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन नहीं, सूर्य का जो टेम्परेचर है वह हमेशा ही उतना ही रहता है। तो उसी प्रकार से हमें अनुभव होता है कि सुबह थोड़ा हल्की धूप है और बाकी तेज़ धूप है, लेकिन धूप तो उतनी ही रहती है। हमारे अनुभव में की वजह से सूर्य में टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आ जाती, इसलिए हमको लगता है कि भगवान बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, ऐसा है। लेकिन भगवान को चाहे वो छोटे रूप में दिखाई पड़े, बचपन के रूप में दिखाई पड़े, चाहे मध्यावस्था में, भगवान भगवान ही होते। और जिस प्रकार से मान लीजिए मैं ये रिकॉर्डिंग रात में कर रहा हूँ, तो सूर्य अस्त हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य मर गया है, और ऐसा भी नहीं है कि सूर्य जब उदित होगा तो अब सूर्य पैदा होगा। सूर्य केवल अपनी इच्छा से अपने आप को आकाश में प्रकट करता है, आकाश में हमेशा रहता है, लेकिन हमारे सामने समय समय पर प्रकट करता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो प्रकटीकरण है या जन्म और कर्म है, वह सब भगवान की अंतरंग शक्ति से होते हैं, वह भौतिक शक्ति से नहीं संपादित होते, अपितु ये सब समझने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि कृष्ण कोई समान राजकुमार हैं, तो बृहद वैष्णव तंत्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहिए। अगर देख ले तो नदी में जाके स्नान करना चाहिए कपड़े के साथ में। तो आप समझ लेना चाहिए कि हमें कितनी बार स्नान करना पड़ेगा, कि प्राय सभी लोग इसी प्रकार की बातें सोचते हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम से बड़ी पुष्टि मिलती है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु अवतरित हुए। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में चतुर्भुज रूप में पहले वसुदेव और देवकी के सामने प्रस्तुत हुए। पहले वसुदेव जी के हृदय में वो उतरे, फिर वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश किए। समान बच्चे की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था, और फिर माता देवकी के गर्भ से सामने प्रकट हो गए विष्णु स्वरूप में, और विष्णु स्वरूप से फिर छोटे बच्चे बन गए। तो उसके बाद वो बताते हैं कि किस प्रकार से वह पिछले 3 जन्मों से उनके बच्चे बन रहे हैं। तो ये सब समझ करके सुन करके समझना चाहिए कि भाई भगवान कृष्ण की जो लीला है ये कैसे हमारे जन्म कर्म से बिल्कुल अलग है। और अगर इस तरह से कोई व्यक्ति समझ लेता है तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवित तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति सुमामेति स्वर्जना। जो इस प्रकार से तत्व में भगवान को समझ लेता है तो दोबारा जन्म नहीं लेता। एक और बात ये भी है कि भगवान आते क्यों हैं, तो आने का कारण है भगवान की कृपा। क्यों? अगर भगवान नहीं आए, इतनी बार आते तब भी तो लोग कहते हैं भगवान निराकार है, अगर भगवान बिल्कुल नहीं आते तो कितना हल्ला होता, तो कितना भक्तों को दुख होता। तो भगवान आकर के अपनी कृपा से प्रकट करते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, निराकार क्यों कहते हो, और मेरी शरण लो। श्रील प्रभुपाद जी एक और बात बोलते हैं कि देखिए, जो आत्मा है जब छोटे बच्चे के रूप में होती है तो छोटे बच्चे की तरह काम करती है, और बड़े इंसान की तरह काम नहीं कर सकती। लेकिन भगवान जब 7 दिन के थे तभी उन्होंने पूतना का वध कर दिया, 12 किलोमीटर लंबा उसका शरीर था। तो भगवान चाहे छोटे बच्चे के रूप में दिखे चाहे बड़े में, उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती है। इसी प्रकार से भगवान ने छोटे बच्चे के रूप में अगासुर, बकासुर, शक्टासुर ऐसे महान बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया बिना किसी प्रयास के, गोवर्धन उठा लिया। तो ये सब चीज़ें हैं, बड़ा ये दिखाता है कि भगवान की जो क्रियाएं हैं वो अद्भुत हैं, अति अति मर्त्यानी, जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता करने की, तो बात छोड़ दीजिए, ऐसी लीला भगवान करते हैं। अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये गोपियों के संग कृष्ण लीला करते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये कैसे भगवान हुए, दूसरों की पत्नियों के संग रासलीला कर रहे हैं, ये तो कोई उचित नहीं है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कृष्ण तुम्हारे भगवान अगर रासलीला कर सकते हैं तो फिर मैं भी कुछ अन्य पत्नियों अन्य लोगों की पत्नियों के संग रासलीला कर लूं, ये सब गलत बात है। देखिए पहले समझ लेना चाहिए कि रासलीला को कौन लोग चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त हैं, परम विरक्त, विरक्त चूड़ामणि हैं, और वह परीक्षित महाराज से बातें कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, और कृष्ण परीक्षित महाराज शरीर त्यागने वाले हैं। तो जो व्यक्ति परीक्षित महाराज पूरे विश्व का राज त्याग करके कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा है तो क्या वह समान स्त्री और पुरुष की बातों को सुनेगा? विचार करना चाहिए। ऐसे ही चतुर महाप्रभु इतने इतने कह सकते हैं कठोर संन्यास धर्म का पालन करते थे कि स्त्री शब्द भी नहीं सुनते थे। तो वह राज गोपियों के प्रेम भाव की चर्चा रात दिन सुना करते थे। क्यों सुन रहे हैं? अगर यह सामान्य काम व्यापार होता तो वह सुनते ही नहीं। इस संबंध में ईशोपनिषद भगवान के बारे में बोलता है कि भगवान शुद्धम है और अपाप विद्धम है, अर्थात जो भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है वह शुद्ध हो जाता है और भगवान उसके पाप से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य, इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं हैं जैसे कि मान लीजिए मल इत्यादि होता है जो जंगल में जमीन में पड़ा रहता है, तो सूर्य उसको प्रकाशित होकर के अपने प्रकाश से उसको शुद्ध कर देता है मलमूत्र इत्यादि के स्थान को, लेकिन स्वयं सूर्य कभी भी अपवित्र नहीं होता है। समझ रहे होंगे, सूर्य पूरे जगत में अकेले ही जितना भी मल है इत्यादि उसको सब स्वच्छ कर देता है, मट्टी बना देता है, लेकिन स्वयं कभी भी अपवित्र नहीं होता। तो इसी प्रकार से भगवान को, भगवान तो परम शुद्ध हैं और अपाप विद्ध हैं, उन्हें कभी पाप उनको विद्ध नहीं कर सकता। इसलिए जो कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है, उनके नाम के संपर्क में आता है, उनकी लीला के संपर्क में आता है तो वह शुद्ध हो जाता है। तो हमने ये सीखा, हमने ये सीखा कि भगवान अज हैं, उनका जन्म कभी नहीं होता, वह कर्मों के बंधन में जब जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं अपनी कृपा से, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं ताकि जीव उनसे प्रेम करे, उनके स्वरूप को समझे, उनको निराकार ना कहे, उनकी लीला कथा संपादित करने के लिए करते हैं, क्योंकि लीला कथा को सुन करके व्यक्ति कृष्ण से आकर्षित होता है, कृष्ण से प्रेम करता है। और साथ ही भगवान कृष्ण के तत्व को समझ करके व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है।